भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज मुरली मनोहर नंद लाला
भज मुरली मनोहर
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज मुरली मनोहर नंद लाला
भज मुरली मनोहर
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज मुरली मनोहर नंद लाला
भज मुरली
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम नित्य की भांति सर्वप्रथम सभी लोग सामूहिक संकल्प मंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको अवगत कराया था, किसी भी सदकार्य अनुष्ठान में संकल्प मंत्र आवश्यक होता है। आइए उच्चारण करते हैं। ॐ तत्सत् द्वैतस्य ब्रह्मणो अह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वात्मनमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतरगते कीलकनाम संवत्सरे अपने अपने नाम का उच्चारण अमुक नामनो हम नाम का उच्चारण अपने अपने गोत्र का उच्चारण अमुक गोत्र उत्पन्नो हम बोलिए अद्य, सभी लोग बोला करो अद्य मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ बुधवासरे महाराष्ट्र प्रांते मुंबई नगर्याम श्री प्रेमपुरी आश्रमे श्रीमद्भागवत्सप्ताह श्रवणार्थम् द्वितीय दिवसे प्रथम उपस्थितौ विनियोगः अनेन श्रीमद्भागवत्सप्ताह श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्टफल सिद्धिः भगवत्कृपा अस्तु श्री कृष्ण परमात्मा देवता प्रियंताम इति बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के तथा आवाहित समस्त देवों के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। जिनकी पावन पुनीत पुण्य स्मृति में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है, ऐसे परम सिद्धि अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत्सत वंदन। श्री प्रेमपुरी आश्रम के समस्त कुशल कर्मठ ट्रस्टीगण हमारे साथ में आए, जिनकी वाणी में सरस्वती का आभास है, ऐसे हमारे स्नेह के पात्र हमारे प्रवीण जी, रवि जी, योगेश जी तथा हमारे आदरणीय आचार्य जी, समस्त श्रद्धामयी माति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा हमारे प्रिय बंधु भागवत रस के रसिक समस्त भक्तवृंद, आइए बड़े प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत सप्ताह की दिव्य इन लीलाओं में हम सभी अवगाहन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए भगवान के पावन चरणों में संलग्न करें। जब हमारी चित्त की वृत्ति परमात्मा में सन्निहित हो जाती है तो हमारी चित्त को एक ओज मिलता है, एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। यह चित्त मात्र परमात्मा में लगाने के लिए ईश्वर ने दिया है। भगवान कृष्ण की वाणी है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ताय उपाशते। भगवान कहते हैं मई आवेश मनो ए माम, माम केवल तुम मुझ में ही चित्त लगाना, मेरे में ही मन को लगाना। मई अर्पित मनोबुद्धि, आप केवल इस मन और बुद्धि को मेरे में ही समर्पित करना। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। जब मन और बुद्धि परमात्मा के समर्पित हो जाएगी तो आपका किया हुआ बुद्धि के द्वारा चिंतन और मन के द्वारा किया गया मनन सब यथार्थ होगा। इन किन प्रकारेण अपने बुद्धि और मन दोनों को समर्पित कर दो। जो मन और बुद्धि दोनों ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं तो आपका सोचा हुआ, आपका चिंतन किया हुआ, आपका विचार किया हुआ सब श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, महान होगा। इतन करें, प्रयत्न करें कि हम इस मन और बुद्धि को भगवान के समर्पित करें, ईश्वर में जोड़ें। संसार में यदि चित्त की वृत्ति जुड़ेगी तो जगत चंचल है। संसर्त इति संसारा, निरंतर सदा सर्वदा सतत यह जगत जो है गतिमान है, चलायमान है। संसरति गच्छति चलति इति संसारा, जो निरंतर चलता है, गतिमान है। स्थिर तो केवल मात्र एक परमात्मा है, कूटस्थ नित्य परमात्मा है। इसलिए उस कूटस्थ नित्य परमात्मा में जब आपकी चित्त की वृत्ति सन्निहित होगी तो आपको स्वतः में आनंद की प्राप्ति होगी। इंद्रियों को बहिरंग न बनाओ, इंद्रियों को अंतरंग बनाओ। वेद भगवान कहते हैं कि परांच खाने परांच खाने वितरणय स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। स्वाभाविक है इन चित्त की वृत्तियों का, इन इंद्रियों का ब्रह्मा ने सृजन ही बहिरंग कर दिया है। साधना का मतलब है, उपासना का मतलब है, भगवत चिंतन स्मरण का मतलब है। साधना के मतलब इंद्रियों को अंतरंग करना, वो स्वाभाविक तो बहिरंग है ही। परांच खानी, खानी इंद्रियाणी, परांच बहिरंग, खानी इंद्रियाणी परांच, ये इंद्रियां तो परांच है, बहिरंग है, बहिर्गामी है। वितरण स्वयंभू, उस ब्रह्मा ने इनका ऐसा ही सृजन किया। तस्मात् कारणात्, इसलिए आप क्या करें, इसलिए आप उन्हें क्या करें, अंतरंग करें, तभी आप साधक हैं। साधना का मतलब क्या होता है, साधना का मतलब क्या होता है? साधना माने संभलना, साधना माने संभलना। यदि हम संभले नहीं तो साधना किस बात की है। साधना माने संभलो, सतर्क रहो, अपने को संभालना ही तो साधना है। वंदना है, उपासना है, पूजा है, भक्ति है। यदि साधक संभला नहीं, यदि अपने को साधा नहीं तो फिर साधना नहीं। परीक्षित महाराज अपने को साध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साध रहे हैं। घर का परित्याग कर दिया है, पुण्य पावन सलिला भगवती जाह्नवी मातेश्वरी गंगा के तट पर स्थित हैं। कलकल नंदिनी मातेश्वरी गंगा के तट पर आसन को एक वट वृक्ष के नीचे जमाया है। उस आसन पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके अति स्वच्छ निर्मल पावन वाहिनी गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के अपने इंद्रियों को अंतरंग अंतरंग कर रहे हैं, विषयों से हटा रहे हैं, भोगों से हटा रहे हैं। कल के प्रश्नों में यही तो बात चली थी, हमने मात्र सूत्रपात किया था। परीक्षित यही तो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियां बस में कैसे होंगी। एक जन्म नहीं, ध्यान देना, एक जन्म नहीं, ये इंद्रियां कितने जन्म जन्मांतरों से बहिरंग हैं, विषयों में संलग्न हैं, विषयों में जुड़ी हुई हैं। जब एक बार कोई पशु, ध्यान देना, रेड़ी पे रखे हुए फल को सब्जी को एक बार मुंह मार लेता है, रेड़ी जा रही है सब्जी की, एक बार पशु ने मुंह मार लिया तो बार बार उसकी तरफ वो दौड़ता है। एक बार मुंह मारे तो उसको स्वाद मिल जाता है, बार बार दौड़ता है, बार बार दौड़ता है। जिस पशु ने एक बार रेड़ी पे रखा फल खा लिया तो बार बार जाता है। हमारी इंद्रियां तो कब से इन भोगों में संलिप्त हैं, कितने जन्म बीत गए, कितनी अवधि बीत गई है इनको विषयों का भोग भोगते भोगते। इसलिए इनको अंतरंग कीजिए, सन्निहित कीजिए, इनको भोगों से विषयों से मोड़ो और अंतरंग करो। राजा परीक्षित ने चिंतन किया कि मेरी इंद्रियां बहुत समय से बहिरंग हैं, अब इनको मैंने अंतरंग बनाना है। हमारे परम पावन गुरुदेव का सानिध्य मिला है, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके इनके पावन पुनीत पादार बिंद में अपने को सुरक्षित रख करके और अब मैं अपनी इंद्रियों को उस परम पिता परमात्मा में जोड़ने का संकल्प कर रही हूं। संकल्प रोज संकल्प क्यों बुलवाते हैं? संकल्प में बल होता है। पहले के योगी इति अमलात्मा ऋषि महर्षि ये सब संकल्प से सब काम किया करते थे। संकल्प किया तो पुत्र हो गया, संकल्प किया तो पुत्री हो गई, भगवान ने संकल्प किया सृष्टि बन गई, जगत बन गया। संकल्प में बहुत बला बल होता है। इसलिए वेद में कहा तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। भगवान शिव संकल्प कर रहे हैं, विष्णु संकल्प कर रहे हैं, ब्रह्मा संकल्प कर रहे हैं, मनु संकल्प कर रहे हैं, योगी इति अमलात्मा महात्मा संकल्प कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है आप संकल्प क्यों नहीं बोलते। संकल्प में ढीले हो गए, ध्यान देना, संकल्प में ढीले हो गए तो सब में ढीले हो जाओगे। संकल्प में चुस्त रहो, संकल्प यदि चुस्त है आपके अंदर स्वाभाविक संकल्प बड़े शुद्धता पूर्वक सजगता पूर्वक भाव पूर्वक दिल से कैसे बोलना चाहिए, दिल से। महाराज जी ने कहा है इसलिए चलो बोल देते हैं, ऐसा नहीं, प्रेम से भाव से। सच्चिदानंद भगवान की, ऐसे संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, पूजन करने का संकल्प करो, भजन करने का संकल्प करो, दान करने का संकल्प करो, तीर्थ व्रत करने का संकल्प करो, होम करने का संकल्प करो। ये उत्तम संकल्प है, उत्कृष्ट कार्यों का संकल्प करो। देखिए यह संकल्प किया जा रहा है, यहां चर्चा आ रही है। सूत जी कहते हैं हे शौनकादियो, विदुर जी ने संकल्प किया, ध्यान देना, विदुर जी हस्तिनापुर में है, आज प्रातःकाल उठे और प्रातःकाल उठकर के संकल्प किया। क्या संकल्प किया देखो, बांचो क्या संकल्प आ रहा है। संकल्प कर रहे हैं विदुरस्तीर्थ यात्रायाम् विदुरस्तीर्थ यात्रायाम् मैत्रेयात् आत्मनो गतिम् विदुरस्तीर्थ यात्रायाम् विदुर ने भावना की, संकल्प किया कि अब मुझे इस हस्तिनापुर की भूमि में नहीं रहना है, क्योंकि ये घर की भूमि, ध्यान देना, यहाँ की भूमि काम भूमि है, हम घर में होते हैं, घर की भूमि काम भूमि बताई जाती है, ये वासना की भूमि है, ये भोग की भूमि है। विदुर जी ने कहा कि ये काम की भूमि है, भोग की भूमि है और वासना की भूमि है, यदि वासना की भूमि में बैठूंगा रहूंगा तो और भोग की भावना बढ़ेगी और काम की भावना बढ़ेगी, इसलिए अब मैंने बहुत समय तक रह लिया है इस भूमि में, अब यहाँ मैंने नहीं रहना है। विदुरस तीर्थ यात्रायाम, विवेचन आ रहा है, विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रे आत्मनो गतिम, मैंने कहाँ जाना है। मैत्रेयात् आत्मनो गतिम, आत्मनः, इस आत्मा का, मुझका बस एक ही गति है, आत्मनो गतिम, एक ही स्थल पर पहुंचने पर मेरी गति है। कहां? मैत्रेयात्, हमको मैत्री जी के पास जाना चाहिए। ध्यान देना, विदुर जी महाराज ने प्रातः काल की वेला में संकल्प किया है कि अब मैंने तीर्थ में जाकर के गुरुदेव मैत्रेय के पास में बैठ करके कुछ आत्मचिंतन करना है, भगवत स्मरण करना है। मैत्रेय जी महाराज वहां जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। मैत्रेय जी महाराज गए, कहां गए सुनो, बड़ी अच्छी बात आ रही है। मैत्रेय जी गए कहां? बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, यहां विवेचन आया है। द्वारिद्य द्वारिद्य नद्या ऋषभ कुरूणाम, द्वारिद्य द्वारिद्यो नद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रे आशीन मगाद बोधम। कहां पर गए? बोले द्वारी। कहां गए? द्वारी, ऋषभ कुरूणा, ऋषि महर्षि योगी अमलात्मा यहां पर विराजमान है, और वहीं पर मैत्रे आशीन मगाद बोधम, अगाध बोधम, जो बोध स्वरूप है, अगाध बोध के स्वरूप है, अगाध ज्ञान के भंडार हैं, अगाध ज्ञान के भंडार स्वरूप मैत्रेय जी महाराज के पास में विदुर जी महाराज गए। वो बैठे कहां पर हैं? बोले द्वारी। बड़ी सूझबूझ के साथ में काम लिया जा रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ। मैं एक टीका पढ़ रहा था, उसमें विवेचन आया, बोले हाँ केवल द्वारी क्यों कहा है, ये आधा ही क्यों बोला है, पूरा शब्द तो हरिद्वारी है। क्या है? क्या है? हरिद्वार है ना, क्या है? हरिद्वार। यहां केवल द्वारी बोल दिया, हरिद्वार नहीं बोला। ये हरिद्वार बोले क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि कोई कहते हैं हरिद्वार और कोई बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। कोई कहता हरिद्वार है, कोई कहता हरिद्वार है। अब हरिद्वार है कि हरिद्वार है, ये आप ही लोग निर्णय कर लो। इसलिए भागवतकार ने केवल द्वारी कह दिया। क्या कह दिया? वेद व्यास ब्रह्म केवल द्वारी बोला, द्वारी। आप कहोगे महाराज तो फिर दो बातें क्यों है, ये हरिद्वार और हरिद्वार, ये दो बातें क्यों? हरिद्वार इसलिए है जो शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनके लिए तो हरिद्वार है। क्या है? हर केदारनाथ। केदारनाथ जी कहां है? केदार में, उनके लिए तो वो द्वार हरिद्वार हो गया है, और जो जाते हैं जो बद्री नारायण बद्रीनाथ उनके लिए हरिद्वार हो गया है। क्या हो गया? हरिद्वार। वैष्णव कहते हैं हरिद्वार, शैव कहते हैं हरिद्वार। अंग्रेजों ने कहा न हरिद्वार है न हरिद्वार है, हरिद्वार है। क्या है? हम हरिद्वार में रहते हैं तो एक पंजाब से गाड़ी आती है, उसका नाम है फूला वाली गाड़ी। फूला वाली जानते हैं, फूल चुंके लाते हैं, हड्डियां क्या बोलते हैं। तो बोले तो हरिद्वार है जहां पर हाड़ भाई जाए। हाड़ समझते हो? हड्डियां, जहां हड्डियां प्रवाहित की जाती है ना, गंगा में हड्डियां डालते हैं ना, बंदा मर जाता है, हड्डियों को चैन करते हैं और हड्डियां लेकर गंगा में, तो कहे तो हरिद्वार है जहां हाड़ बहाए जाते हैं। हाड़ों को बहा जाया वो है हरिद्वार। तो कुछ लोग बोलते हैं हरिद्वार, हाड़ बहाते हैं, अंग्रेज बोलते हैं हरिद्वार, वैष्णव बोलते हैं हरिद्वार, सब बोलते हैं हरिद्वार। कितने भाव बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो मैत्रेय जी महाराज के पास में विदुर जी महाराज गए। विदुर जी महाराज गए, देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं, मिलन ऐसा होना चाहिए, मिलन हो इतिहास बन जाए। राम भरत का मिलन हुआ है, इतिहास बन गया है। राम और भरत मिले तो कितना बढ़िया, मिलन हो तो ऐसा हो, मिलन एक स्मृति छोड़ जाए, एक चिन्ह छोड़ जाए, युगों तक नाम लिया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी मिलाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, इस लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीवो ब्रह्मैव, जीव और ब्रह्म का मेल आद गुरु शंकराचार्य जी महाराज कराते हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरा, अरे भाई आपने पृथक पृथक समझ रखा है, यही तो भूल है, यही तो दुख का कारण है, यही तो बड़ी समस्या है। दुख का कारण है भेद, सुख का कारण है अभेद। भेद में जीना अच्छा नहीं है, अभेदात्मक धरातल पर जियो। आदि गुरु शंकराचार्य जी मेल कराते हैं, जीव ब्रह्म का मेल करा दिया, कितनी सुंदर बात है। राम भरत का मिलाप होता है, विदुर और मैत्रेय का मिलन होता है। मिले तो कैसे मिले? बोले चार मिले, चार मिले चौसठ खिले, चार मिले चौसठ खिले, और बीस रहे कर जो हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे सात करो। ध्यान देना, चार मिले, चार मिले, दो आंखें हमारी और दो आंखें दूसरे की जिसे मिला जा रहा है। चार मिले, ये चार मिले, और मिलते ही चौसठ खिले, बत्तीस इधर के, मुकेंद्र बत्तीस दांत होते हैं, बत्तीस ये और बत्तीस वो, कितने हो गए? चार मिले चौसठ खिले, और बीस रहे कर जोर, इधर के दस और उधर के दस, बीस रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, और बिहसे सात करोड़। हमारे शरीर में कितने रोम है? सात करोड़। बिहसे सात करोड़, रोम रोम प्रफुल्लित प्रफुल्लित हो गया। क्या मिलन है! मैत्रेय और विदुर का मिलन देखिए, क्या क्या विलक्षण मिलन है, है? ये मिले तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, कई बार दुनिया वाले मिलते हैं तो कुमला जाते हैं। अरे कहां मत्थे लग गया ये है जी, कहां मत्थे लग गया। कई बार लोग किनारा भी करते हैं, सामने आ रहा है और दृष्टि पड़ रही तो मोबाइल लेकर के हेलो हेलो झूठे ही कहीं इसका मुलाकात से हो जाए, कहीं आंख न मिल जाए। वो मिलने नहीं चाहता है, वो मिलना ही नहीं चाहता है। ध्यान देना, एक मिलने की इच्छा करता वो मिलना नहीं चाहता है। ये मिलाप नहीं है, मेल नहीं है। आइए आगे बढ़िए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर और मैत्रेय का मिलन हरिद्वार की पावन भूमि में होता है। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे सुधाम के लिए, तब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव इस समय मेरा विदुर नहीं है, मुझे विदुर की स्मृति आ रही है, मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे विदुर की बड़ी स्मृति सता रही है। आप ऐसा करना कि मेरे विदुर जब तुमको मिले, हे मैत्रेय, विदुर और मैत्रेय और उद्धव दोनों ही हैं उस समय पर, हे मैत्रेय जब भी आपको विदुर मिले तो उनसे आप जरूर एक बार बोल देना कि भगवान ने स्वदेश स्वधाम जाते जाते तुमको याद किया था, तुमको याद किया था। ऐसी करनी करो, ऐसा प्यार करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी तुमको याद करे, भगवान भी तुमको याद करे कि भैया जाते जाते हमें तेरी बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही। दुनिया में ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, इतना प्यारा जीवन जियो कि भगवान भी आपको स्मरण करे, आपको याद करे कि मेरा भक्त कोई मेरे को मिला था। भगवान गए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयातात्मनो गतिम ज्ञात्वा गादिहस्तिनपुरम तथा वाप्त विवप्सितः। मैत्रेय विदुर का मिलन बड़ा ही विलक्षण मिलन है, बड़ा अच्छा मधुर मिलन है। बड़ी लंबी चर्चा यहां पर आई है, क्या क्या बातें हुई हैं, बड़ी लंबी कथा हुई है, पूरी भागवत विदुर और मैत्रेय के बीच में हुई है। आप सुनेंगे आगे तक, लंबी चर्चा है, आप सुनते रहेंगे आगे के प्रसंगों में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, विदुर जी को मिलकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विदुर ने विचार किया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। एक बार विदुर के अंदर इच्छा आई जो लौट करके हस्तिनापुर आई। जब हस्तिनापुर आई ज्ञात्वा गाद हस्तिनपुरम, हस्तिनापुर में पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने ज्ञात्वा सबकी जानकारी ली, सभी कुशल से हैं, सभी ठीक हैं। मैं तो चला गया था तीर्थ में, चला गया था। तीर्थ का मतलब क्या होता है, तीर्थ तीर माने किनारे पर, स्था माने रहना, परमात्मा के बिल्कुल किनारे पर। परमात्मा तीर्थ का मतलब है भगवान के समीप रहना, ईश्वर के पास रहना। तीर्थ का वास करने वाला भगवान के बिल्कुल पास रहता है, बिल्कुल पास, एकदम नजदीक। तीर का अर्थ ही होता है किनारे पर, तीर माने किनारा, स्था माने रहना, भगवान के किनारे, भगवान के बिल्कुल पास में रहना। तीर्थ में जाओ, ध्यान देना, तीर्थ में जाओ। अब तो मोबाइल चल पड़े, मोबाइल के बिना आदमी जाता ही नहीं है। अब वो तीर्थ में जाता ही नहीं, पूरा घर बांध के ले जाता है। कई अटैची भर के उसे कपड़ा भी चाहिए, आचार जरूर ले जाएगा। ये सब व्यर्थ की चीजें नहीं। तीर्थ में जाओ तो केवल गंगा जल का पान जरूर करो, गंगा का स्नान जरूर करो, तभी तीर्थ तीर्थ है, वरना तो सैर सपाटा है, पिकनिक है। आइए उधर बहुत नहीं जाता हूं, वापस लौट के आओ। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए, सबका कुशल छह पूछा, सभी ठीक तो है ना। सबका कुशल लेने के बाद में विदुर जी महाराज, धृतराष्ट्र जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र के कक्ष में गए, कैसे हैं आप? बोले बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब सेवा करते हैं, हमारी बहुत सेवा करते हैं। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र जी क्या कह रहे हो, अभी आप यहां से गए नहीं? बोले इतनी सी सेवा हो रही है, हम कहां जाएं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी खूब सेवा हो रही है, हमें जाने की क्या आवश्यकता है? ध्यान देना, हमारे शास्त्रों को पढ़िए तो जितने राजे महाराजे हुए उन्होंने युवा अवस्था में राज्यों का संचालन किया है, और जब वानप्रस्था आई, जब वानप्रस्थ अवस्था आई तो सभी ने राज्यों को छोड़ दिया। आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सब ग्रंथों को पढ़िए, रामायण में भी आता है कि बरबस राज सुतहि को दीना और नार समेत गवन बन कीना। शत्रुपा मनु जी, बरबस जबरदस्ती राज्य दे दिया, बरबस राज्य सुतहि को दीना नारी समेत गबन बन कीना, पत्नी के शहर। ध्यान देना, दशरथ जी गद्दी पर बैठे हैं, एक दिन शीशा उठाया और क्या देखा, अरे श्रवण समीप, श्रवण समीप भये सुत केशा। श्रवण माने कान, कान के ऊपर बाल सफेद हो गए, अरे ये तो सफेद हो गए हैं, अब मेरे को जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए, अब मेरे को जिम्मेदारी। तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो गया। आप रोज शीशा देखते हो, कभी वैराग्य आया? दशरथ जी ने एक बार शीशा देखा, एक बार शीशा देखा, बाल काल बाल सफेद हो गए, अब जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। आप बोलोगे, महाराज हमारे तो कभी सफेद होते ही नहीं है, मैं रोज सवेरे काला काला कर लेता हूं, हमारे सफेद होते ही नहीं, सफेद होए तब तो, हमारे सफेद तो होते ही नहीं है और होंगे भी नहीं। ध्यान देना, ये सफेद बाल क्या है, ये वैराग्य का प्रतीक है कि आप दुनिया के लायक नहीं रहे हो, दुनिया के योग्य नहीं रहे हो, अब आप पर सफेदी आ गई है, अब दुनिया ने आपको रिटायर कर दिया है, अब आप अच्छे नहीं, अब दुनिया के लायक नहीं, अब भगवान के लायक बन गए हो। किसके लायक हो गए हो? है जी, भगवान कहता है कि तुम्हें ऐसे वैराग्य नहीं आएगा, तुम्हें दुनिया के रसीले शब्द सुनने की बहुत आदत पड़ी है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे कानों की आवाज सुनने की मैंने कम कर दी है। ये आदमी बहरा क्यों होता है? ये आंखें कमजोर क्यों हो जाती हैं? भगवान कहते हैं कि तूने बहुत सुना, अब मैं देखता हूं, तो आपने मशीन लगा ली, हमने मशीन लगा ली, करो कम का मैं मशीन लगा लेता हूं। नजर भगवान ने कम की, मैंने चश्मा लगा लिया, बाल सफेद हुए, मैंने डाइल गए काली कर लिए। ध्यान देना, ये सब विरक्ति का परिचायक है, ये वैराग्य के प्रतीक हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां पर आ रहा है प्रसंग। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी को कहा, धृतराष्ट्र जी आप आराम से इन महलों के अंदर रह रहे हो, कुछ सोचो विचारो चिंतन करो कि प्रकृति तुम्हारा साथ छोड़ रही है, फिर भी आप चिपके हुए हो, घर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। ध्यान देना, घर में बहुत ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है, मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी कितने परिश्रम से हर वनस्पति के पास जाती है और वहां से पराग लाती है, रस को ला करके जब वो ग्रहण करती है तो पंजे पंखे पीछे और केवल जिह्वा को निकाल के खाती है। उसी ने तैयार किया है, पर खाने बड़ी सावधानी है। हम मानते कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मक्खी में इतनी बुद्धि है, इतनी सतर्कता है, इतनी कुशलता है कि जिह्वा को लंबा निकाल करके अपने को बचा के खाती है। और इंसान ऐसा है, हमने कमाया है, छपाक से गिर जाता है, वो ममता में फंस जाता है, अपने से अच्छी मक्खी है। मकड़ी जाला बनाती है, जाले के अंदर रहती है, तमाम जीवों को फंसा के उधर का पोषण करती है और जब चाहे तब जाले से निकल के चल देती है। ये आदमी बढ़िया सा कोठी बनाता है, बगला बनाता है, क्या क्या तैयार करता है, उसी में फंस जाता है, उसी में और उसी में फंस करके मर जाता है। कौन समझदार निकला? हम क्यों कहें आप नहीं हो? अपने आप समझिए, ये सब चर्चाएं यहां आ रही हैं। विदुर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र क्या कर रहे हो? अरे जिसको तुमने जहर के लड्डू खिलाए उसके यहां मीठे लड्डू खा रहे हो? अरे हम तो जाने के लिए कहा था और बच्चों ने रोक लिया, ये नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी तो दिली इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मैं अब चला जाऊं छोड़ करके, मेरे बच्चे जाने नहीं दे रहे। बच्चे जाने, विदुर जी ने कहा जो फल पक जाता है, जो पत्ता पक जाता है, वो पेड़ से नहीं पूछता है कि मैं कब गिरूं, वो पका हुआ फल नहीं पूछता है कि मैं गिरूं कि न गिरूं, पका हुआ पत्ता नहीं कहता है, पूछता कि मैं गिरूं कि न गिरूं, वो बिना बताए ही गिर जाता है। अरे जाने वाला तो बिना कहे ही चला जाता है। हम क्या बता के घर से निकले थे? हम साधु बने भागे, क्या बता के निकले थे? बिना बताए निकले, भाग गए, फिर पकड़े गए, खूब पिटाई की गई। हाँ हमें मालूम है, बड़ी समस्या झेली है। ऐसी कथा नहीं सुना रहा हूं यहां बैठ करके। ये लाइन बड़ी टेढ़ी है, ये लाइन बड़ी टेढ़ी है। एक चिड़िया का बच्चा भी पक्षी अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। शुक्री कुकरी भी आप देखिए, एक कुतिया बच्चा देती है और कोई उसके पिल्ले को छू तो खाने को दौड़ती है। गाय के बछड़े को देखे, कोई उसको टच करने जाए तो गाय दौड़ती सींगों से मारने के लिए। कोई बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। हम घर से निकले तो मुझे पिटाई की गई। क्यों पिटाई की गई? की गई कि घर नहीं छोड़ेगा, भीख नहीं मांगेगा। लेकिन प्रारब्धम बलवत्तरम, आदि शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, प्रारब्धम बलवत्तरम खल विदाम भोगेन संशीयते। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। मेरी आदत तो विस्तार करने की है, दो कितना विस्तार होता जा रहा है और घड़ी पे निगाह गई, बिल्कुल विस्तार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एकदम। आइए लगती समझाया बुझाया। विदुर जी ने कहा सप्त सूत्र पर जाइए बहुत जल्दी, अब समय ज्यादा नहीं आपके पास। हम कैसे जाएं? बोले मैं छोड़ाता हूं। गांधारी धृतराष्ट्र को लेकर के हिमालय में सप्त सूत्र में गए और वहां पर छोड़ा। धृतराष्ट्र जी महाराज ने पद्म आसन लगाया है, ध्यान देना, प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, उदान में समाहित करते हुए अपनी वृत्ति को वृंदावन में ले जाकर के ध्यानस्थ हो गए हैं और इस प्रक्रिया से उन्होंने अपनी गति को संभाला है, ऊर्ध्वगामी हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपको इस प्रकार से मैंने ये प्रसंग सुनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है
राधे गोविंदा मन भज ले हरि का
भजले हरि का प्यारा नाम है।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, आनंद विभोर हो गए। परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवन आपने मुझे विदुर की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, भगवन ये विदुर कौन थे, ये विदुर कैसे हुए? बोले मांडव्य सापात भगवान, मांडव्य सापात भगवान, प्रजा संयम नोयम भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुता। ये विदुर जी कौन थे भगवान, बतलाने की कृपा करें। बोले मांडव विशापात भगवान, ये महर्षि मांडव्य थे, बड़े भजनानंदी थे, निष्ठावान महर्षि, भगवान की आराधना में उपासना में सदा सर्वदा संलग्न रहते थे। वो चाहते थे कि मेरा एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना न बीते, मैं निरंतर सदा सर्वदा सर्वकाल ईश्वर का चिंतन करता रहूं, ऐसी उनकी वृत्ति बनी थी। अधिक से अधिक समय वो भगवान के भजन में मस्त रहा करते थे, उसी में वो डूबे रहते थे। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित एक बार एक घटना घटी, कुछ चोरों ने राजा के यहां पर चोरी की और चोरी ले करके जो वो भागे तो सैनिक उनके पीछे पड़ गए। चोर आगे आगे दौड़ रहे हैं और सैनिक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। चोरों ने सोचा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। मंडप में महर्षि आंख बंद किए हुए ध्यानस्थ में बैठे थे अपने आश्रम के प्रांगण में। चोरों ने आओ गनाना ताओ भागते भागते जो वो सोना चांदी हीरे मणि माणिक बैदूर जो चुराया था वो महर्षि मांडव्य के पीछे रखकर के वो छुप गए आश्रम में। सैनिक गए, उन्होंने खोजा तो मांडव्य के बगल में सारा धन रखा हुआ था। धन वहां पाया, मांडव्य को हिलाया जगाया, वो तो समाधि में थे। कई बार पकड़ के हिलाया तो मांडव्य की समाधि खुली। क्या बात है? बोले ये बहुत अच्छी बात है, आंखें बंद कर ली। बोलते क्या बात है, ये धन तुम्हारे पास मिला है, तुमने चोरी की राजा के यहां से। मांडव्य बोला मैं चोरी से कोई मतलब नहीं है, धन कहां से कैसे कौन मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो महात्मा हूं, भजन कर रहा हूं और भजन मस्ती में डूबा था। बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, धन आपके पास पाया गया है, आप चोर हैं, राजा के दरबार में चलिए। मांडव्य महर्षि को पकड़ करके राज दरबार में ले गए। चोरों ने सैनिकों ने कहा कि ये धन इन्हीं के पास मिला है, ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, हमारी दृष्टि में इनके पास ये सब निकला है तो चोर यही होंगे, यही हैं। थोड़ी राजा को दूरदृष्टि होनी चाहिए, सब बहुत चिंतन नहीं किया और घोषणा कर दी जाओ इनको सूली पे चढ़ा दो। जब मांडव्य को सूली पे चढ़ा दिया, चढ़ा तो दिया लेकिन सूली काम नहीं कर रही है, सूली घुसनी चाहिए, मर जाना चाहिए, मांडव्य के अंदर सूली प्रवेश नहीं कर रही। देखिए तप का बल, भजन का बल, यदि भजन है, भजन में ताकत है तो गोली आएगी वापस लौट जाएगी। गोली काम नहीं करेगी, बंदूक काम नहीं करेगा, बंदूक मिस हो जाएगी, गोली मिस हो जाएगी, नहीं चलेगी। ये भजन की ताकत होती, भजन की, भजन की, भजन करो, ये भजन का बल है। जब गोली कारतूस काम नहीं करता है भजन के सामने। वो शूली जब प्रवेश नहीं की, राज ने कहा उतार दो इसको, ये नहीं मरेगा। मंडप ने कहा, मंडप ने कहा मैंने चोरी नहीं की है, और बिना चोरी के मुझे ये हमारे जो लोग मुझे रोज पूछते थे, मुझे रोज नमस्कार करते थे, मुझे प्रणाम करते थे, उस दुनिया के सामने प्रजा के सामने हमारी ऐसी गति की, इसके मतलब यमराज तू सही निर्णय नहीं दे रहा है। धर्मराज तू कहां सोता रहता है, किसी का दंड किसी को मिल रहा है, किसी किए गए कर्म को चोर ने चोरी की है और उसका दंड मेरे को मिला, सूली पर मुझे चढ़ाया गया। आक्रोश आया मांडव्य को, और मांडव्य गए एम के पास, धर्मराज के पास गए मांडव्य, और आग बबूला चेहरे को तमतमाता हुआ देख करके धर्मराज कांपने लगा, यमराज कांपने लगा, आते हुए देख करके हाथ जोड़ा, महाराज महाराज आपको देख के मुझे भय लग रहा है। जब ऋषि को क्रोध आता है, तपस्वी को क्रोध आता है, तो अच्छे अच्छे कांपते हैं। धर्मराज कांपने लगे। मंडप ने कहा कि तुम इसके मतलब सोते रहते हो, तुमको मालूम मेरी प्रजा के सामने भक्तों के सामने हमारी प्रतिष्ठा की क्या स्थिति हुई, कोई करता है कोई भरता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमने चोरी नहीं की और सूली पर मुझे चढ़ाया गया, ये दंड तुमने मुझे दिलवाया, ए क्यों, मैं तुमको शाप देता हूं, आप इस पद के लायक नहीं हो, जाओ जाओ तुम इस लोक से हट करके मृत्यु लोक में जाओ, और मृत्यु लोक में जाकर के दासी के पुत्र बन जाओ। क्या बन जाओ, दासी के पुत्र बन जाओ। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित वही यम वही धर्मराज आज मंडप के शाप से विदुर बने। कौन बने जी, विदुर बने। जब शाप दे दिया, यम बोले कि आपने मुझे आक्रोश में आकर के शाप दे दिया, इतना तो अंधाधुंध हमारे यहां नहीं है, अब आप शाप दे दिए हैं, भगवान थोड़ा आप विचार करो कि ये जो आपको सूली पे चढ़ाया गया, आपकी कहीं थोड़ी गड़बड़ी थी, कहां गड़बड़ी थी, क्या गड़बड़ी, क्या चोरी मैंने की थी, नहीं नहीं आपने नहीं की थी, फिर सूली पे क्यों चढ़ाया गया, इसलिए चढ़ाया गया कि किसी समय एक बार आपने एक चीटी जा रही थी, कीड़ी तुम्हारे हाथ में सोई थी, तुम छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने अवैध अबोध बालक थे और खेल रहे थे, आपके सामने वो कीड़ी आई और आपने सुई ली और सुई को लेकर के चीटी को यूं बेधा, सुई से बेधा था तो चीटी मर गई थी, मरी थी आपके सुई के भेदन करने से। महाराज जी वही तुम्हारा किया हुआ कर्म है जो तुमको इस रूप में प्राप्त हुआ। मंडप भी बोले तो अबोध बालक को तो उसका फल नहीं मिलना चाहिए, अबोध है वो तो भूल माता पिता की है, ध्यान रखे माता पिता, समझो आप लोगों के लायक बात है, बच्चों का पूरा ख्याल रखो, किस चीटी को मार रहे हैं, किस कीड़े को मार रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखो, बच्चा तो अबोध होता है, कई बार बिच्छू जा रहा तो उठा के मुख में डाल देगा, सांप भाग रहा हो मुंह में डाल देगा, वो तो बच्चा अबोध है, ये माता का दायित्व बनता है, हमारी गलती नहीं है, हम तो अबोध थे, हमको तो जानकारी नहीं थी, बच्चा अबोध होता है, वो तो बिच्छू खा सकता है, सांप उठा के मुख में डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। धर्मराज बोले, यमराज बोले तो अबोध था इसीलिए आप सूली पे चढ़े और मरे नहीं, नहीं तो मर जाना चाहिए था, आपने मुझे शाप दे दिया, आपने मुझे शाप दे दिया। अन्य विनय किया, जब एम ने धर्मराज ने अन्य विनय किया तो कहा अच्छा जाओ कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं तुमको 100 वर्ष तो रहना पड़ेगा, 100 वर्ष तो आपको रहना ही पड़ेगा, तो 100 वर्ष तक वही यमराज अरिमान नाम का सूर्य जब तक वो 100 वर्ष भूमि पे यहां रहे विदुर जी, तब तक अरिमान नामक जो सूर्य था उसने वहां संचालन किया, वहां निर्णय लिया, जो कुछ होता था उस कार्य का संवाहन किया। इस प्रकार से उनको दंड मिला और इस प्रकार से वो विदुर बने। ये आपने विदुर की चर्चा सुनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसे आप शिक्षा लें कि हम किसी भी कार्य में, किसी भी कर्म में बहुत सावधानी बरतें। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। कर्मणा गहनो गति, कर्मणा गर्म की, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। चित्र हमारे चित्रगुप्त होता है, यहां बैठा रहता है, बोलता कुछ नहीं है, वो सब नोट करता रहता है। कुछ भी करो बोलेगा कुछ नहीं, और सारा का सारा आपका अभी सब चल रहा है, उसमें हो रहा है सामने। इसी प्रकार से हमारा जो कुछ होता है वो यथाविधि उसका हिसाब होता रहता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम जय, जय श्री राधे श्याम। आज के इस प्रसंग में अधिकांशतः विदुर और मैत्रेय का ही संवाद है। ध्यान से श्रवण करें, विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में विराजमान हैं। विदुर जी ने कोई सुझाव दिया, ध्यान देना, कथा बड़ी मार्मिक है। सुझाव दिया, मंत्री का काम होता सुझाव देना। सुझाव दिया दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा है, युवराज है। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। विदुर ने कहा नीति यही कहती है, आपके बात माननी चाहिए। दुर्योधन ने उसका विरोध किया। बात संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। विदुर ने कहा आपको यह मानना चाहिए, नीति यही कहती है। दुर्योधन ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, ध्यान देना, जब बड़े का, बुजुर्ग का, माता का, पिता का, गुरु का, वाक्य का अनादर होना शुरू हो जाए तो समझदार का लक्षण है कि वहां बहुत बोलना नहीं चाहिए। विदुर ने अपने मन के अंदर विचार किया, मैंने बहुत अच्छी बात कही, इसने नहीं मानी, अब मुझे मौन हो जाना चाहिए, यदि हो सके तो मैं मौन होकर के रहूं और नहीं रह सकता हूं तो ऐसे हस्तिनापुर को मुझे छोड़ देना चाहिए, हस्तिनापुर को छोड़ देना चाहिए। विदुर जी ने चिंतन किया, ध्यान दो केवल भागवत की बात नहीं है, आप थोड़ा गौर करके रामायण को देखें तो रामायण में भी इसी प्रकार की स्थिति है। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाया तो विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी, विभीषण ने भी विचार किया अब मुझे क्या करना चाहिए, जहां पर नीति की बात, सत्य बात नहीं मानी जा रही तो मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण ने कहा बहुत अच्छी बात यही होगी कि मुझे भले ही वो सोने की लंका है और इस लंका को मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसे सोने का क्या लाभ जो कानों को फाड़ दे। सोना भाई अच्छा होता तो जीवन का संरक्षक बने, कानों को फाड़ दे, नाक को फाड़ दे, सोने का कोई उपयोग नहीं है। अरे सोने की लंका है तो मैं क्या करूं, इसको चाटूं, खाऊं, क्या करूं, ऐसी सोने की लंका को छोड़ देना चाहिए, ऐसे भाई को छोड़ देना चाहिए। ध्यान देना, विभीषण जी महाराज ने ऐसा विचार करके सोने की लंका और भाई रावण का परित्याग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मीरा ने विचार किया, मेवाड़ की मीरा ने विचार किया, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूं, भगवान का चिंतन ही तो कर रही हूं, ईश्वर का भजन ही तो कर रही हूं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हूं, मैं उस जगन्नीता जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे हूं, इस गुणानुवाद में हमारे इस मेवाड़ का भी हित है और मेरा भी हित है, सभी का हित है। जब कोई भजन करता है तो वहां का परिवेश, वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। मीरा ने कहा इस मेरे गुणानुवाद से लोगों की वृत्तियां शुद्ध हो रही है, लोगों में क्लेश खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे इस ईश्वर के गुणानुवाद को लोग पसंद नहीं करते, लोगों को प्रिय नहीं लगता है। तो मीरा ने कहा मैं क्या करूं, क्या करूं, यदि आपके सामीप्य में, सानिध्य में, संपर्क में कोई संत है तो संत से परामर्श लो, मैं क्या करूं, बड़ी समस्या बन गई है, जिंदगी कैसे जीऊं, अब परिवार में रहा नहीं जाता है। ये समस्याएं आपके सामने भी कई बार आई होंगी, मीरा के सामने ही नहीं, केवल विभीषण के सामने ही नहीं, केवल विदुर के सामने ही नहीं, इस भागवत के प्रसंग को केवल आप इस मंच तक सीमित न रखें, इसको घर में ले जाओ, घर में देखो, घर में विचार के देखो, चिंतन करके देखो, क्या ये प्रसंग मेरे पर फिट हो रहा है, क्या मेरे परिवार में घट रहा है, कहीं मैं भी तो विदुर नहीं बना बैठा हूं, अरे कहीं मैं भी तो विभीषण नहीं बना बैठा हूं, कहीं मैं भी तो मीरा की तरह नहीं बना बैठा हूं, अरे कहीं हमारा मीरा की तरह हाल न हो रहा हो, हम भी भजन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, पर परिवार के लोग कहते हैं मुझे विक्षेप होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है तुम्हारे इस भजन से, तुम्हारे इस माला से, तुम्हारे इस कीर्तन से, तो अब क्या करना चाहिए। कोई संत आपके संपर्क में है तो संत से जरूर पूछो, महाराज अब मैं क्या करूं, जिंदगी दुश्वार बन रही है, अब जिया नहीं जा रहा है, कब तक इस कलह में रहा जाए, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, ये परिवार के लोग नहीं करने देने चाहते, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। मीरा जी ने संत को कहा, संत ने उत्तर दिया, अरे तजिए ताहे, तजिए ताहे कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। मीरा तजिए ताहे कोट बैरीशम, उसको बैरी समझ करके, शत्रु समझ करके तजिए, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही है, परम प्रिय है, अपना ही पुत्र है, अपना ही परिवार है, लेकिन ऐसी स्थिति में तजिए ताए कोट बैरी शम। हम नहीं कह रहे भैया, आप उल्टा न समझना कि महाराज हमारे परिवार को बैरी बनाने आए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जो चर्चा आ रही वो आपको मैं सुना रहा हूँ। अरे तजिए ताई कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। छोड़ देना चाहिए, मीरा जी ने मेवाड़ को छोड़ा, ध्यान देना, मीरा जी ने मेवाड़ को छोड़ा और विभीषण जी ने लंका को छोड़ा। विभीषण जी ने लंका को छोड़ा और विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया। पैदा हुए तो क्या हुआ, यहां पैदा हुए तो क्या हुआ? अरे वो बंसी भी तो उस जंगल में पैदा हुई थी, लेकिन वहां से हटने के बाद, ध्यान देना, हटने के बाद, कटछटने के बाद कन्हैया के ओठों पर आई है। ओहो, फिर क्या मधुर सुनी, मधुर सुनी, मधुर धुनी उस वीणा की सुनी गई और सभी को प्यारी बनी, कन्हैया को बड़ी प्रिय लगी। उसका नाम पड़ गया बंसी वाले। क्या नाम पड़ गया? उस बंसी को भी बहुत जगह छोड़ने पड़ी। बंसी फिर कभी बोलूंगा जब बंसी का प्रसंग आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, विभीषण को छोड़ने पड़ा, विदुर को छोड़ने पड़ा, मीरा को छोड़ने पड़ा। सभी लोगों ने चिंतन किया, छोड़ दिया। विदुर जी महाराज जंगल में गए, एक कुटी बनाई, फूस की कुटी बनाई और कुटिया के अंदर रहने लगे। विदुर विदुरानी शोल्भा दोनों रहते हैं, बड़े आनंद से भजन करते हैं। जल पीने को मिले पर शांति से मिले, रुखी सुखी खाने को मिले पर शांति से मिले, उसमें आनंद है। भजनानंदी व्यक्ति सुख टिककर खा करके, सुखी रोटी खा करके भी 56 भोग का आनंद लेता है, क्योंकि उसके उस भोजन में साक्षात भगवान उतर करके आते हैं। और जिस भोजन में 56 प्रकार का भोग है लेकिन कलह और कलेश है, वो भोजन नहीं है, वो रक्त का पान है। विदुर जी महाराज जंगल में कुटिया बना के रह रहे हैं, बहुत आनंद है। विदुरानी रोज पूजा करती हैं, 24 घंटे की पूरी लिस्ट बनी है, कब क्या करना है, यीशु से हटना नहीं, यीशु से जुड़े रहना है, प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान का चिंतन। बड़ी सुंदर चर्चा भागवत में आ रही है कि अपने जीवन को भगवत मय बना लीजिए, आपके जीवन का क्षण कोई ऐसा न हो कि जो ईश्वर के चिंतन से व्यतिरिक्त रहे। आप प्रश्न करेंगे, महाराज तो क्या विदुर जी सोते नहीं थे, तो क्या सुलभा सोती नहीं थी? अरे भैया, भागवत में लिखा है कि जब चरी चरपाई पर सोने जाओ, जब पथारी पे लेटो, जब बिस्तर पे लेटो, तो भगवान का चिंतन करते करते सो, और जब जगो तो भगवान का नाम लेते लेते जागो, तो सोया हुआ जो समय है वो आपका साधना है, उपासना है, समाधि है। वो आप सोए नहीं, समाधि है वो, वो भजन है, वो ईश्वर का चिंतन है, वो ईश्वर का गुणानुवाद है। आप कहां सोए? चिंतन करते करते आंख बंद हो गई है और खुले तो भगवान का चिंतन हो रहा था। पिताजी तीर्थ में गए हैं, पड़ोसी ने पूछा कि आपके पिताजी कहां हैं? बोले तीर्थ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे, तीर्थ करने गए, तीर्थ में हैं, भगवान का दर्शन करने गए, गंगा नहा रहे हैं, गंगा नहाने गए। तो हमेशा गंगा नहाते हैं क्या? हमेशा दर्शन करते हैं, कभी सोते भी होंगे, कभी रोटी भी खाते होंगे, लेकिन तीर्थ की यात्रा, तीर्थ का जाना हर क्षण तीर्थ कहलाता है। ट्रेन में बैठे तो तीर्थ है, शौच करने जा रहे तो तीर्थ है, बाथरूम में है तो तीर्थ है, रोटी खा रहे तो तीर्थ है। ऐसा कौन सा यात्रा का समय, वो तीर्थ यात्रा का ऐसा कौन सा क्षण है जो तीर्थ यात्रा नहीं कहलाता, तीर्थ नहीं कहलाता है। बहुत अच्छा विवेचन किया, बहुत सुंदर विवेचन किया। सुनो ध्यान से, फूस की कुटिया बनाई है, उसी में रह रहे हैं। जहां बसो सोई सुंदर देशु, जहां पर बास है, भगवान का भजन है, वही सुंदर देश है, वही श्रेष्ठ देश है। विदुर विदुरानी दोनों बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। प्रयास करो यदि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ के पूजा करें तो अनंत रूपाय कल्पते उसका कई गुना अधिक फल बनता है, कई गुना, ऐसा शास्त्रों में चर्चा आता है। दोनों भजन करते हैं, एक दिन विदुरानी का हृदय सहज है, कोमल है, नारी के हृदय का यहां विवेचन आया है कि नारी का हृदय सुकोमल होता है, भाव प्रधान होता है, भक्ति प्रधान होता है, और जरा पुरुष का हृदय होता है उसकी तुलना में कुछ कठोर होता है, उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, उसमें भक्ति की प्रधानता होती है, नारी जल्दी प्रभावित हो जाती है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जरा सी कोई बात होती है तो माताएं रोने लग जाती है। क्यों रोने लग जाती है? उनके हृदय का ये वैशिष्ट्य है, उनका हृदय कोमल है, द्रवीभूत हो जाता है। बड़ी सुंदर चर्चा। विदुरानी ने एक दिन भजन करते करते माला घुमाते घुमाते विदुर जी से कहा कि हमने ऐसा पढ़ा था, सुना था सत्संग में कि जब भजन करते करते 12 साल बीत जाएं तो 12वें साल होने पर भगवान जरूर मिलते हैं। 12 साल तो अपने को हो रहा है, अब भगवान कब आएंगे, द्वारकाधीश कब आएंगे? एक बार जाके उनको बोल के आओ ना, उनके बार आमंत्रण दो ना, उनको बुलाओ ना। विदुर जी बोले, अरे अब वो गोकुल के नहीं हैं, वो वृंदावन वाले नहीं हैं, जो इशारा करो दौड़ के पीछे पीछे चले आए, ऐसे नहीं। छछिया भर छाछ पे नाच नचायो, अरे काऊ अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, अरे चुल्लू भर मट्ठे पे नाच करने वाले नहीं हैं, अब तो वो द्वारिका में पहुंच गए हैं, महाराजा धराज बन गए हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, अब वो महाराजा धराज हैं, ऐसे कैसे आएंगे? उन्हें अपने जरा पद का भी तो गरिमा रखना पड़ेगा। शुल्बा ने कहा कि जहां भक्ति होती है, जहां भाव होता है, भक्त का जैसा भाव होता है भगत भगवान वैसा ही बन के आ जाता है। हम तो ये सुना है, हम तो ये पढ़ा है, हम तो ये सत्संग में सुना है कि भगवान तो भगत के अधीन होता है। यादृशी जायते भावना सिद्ध भवती तादृशी, भगवान का अपना कोई रूप नहीं होता है, अपना स्वरूप नहीं होता है, जो भक्त रूप गढ़ देता है, जो भगत सोच लेता है वैसा भगवान को बनकर के आने पड़ता है। नामदेव के पास कुत्ता बन करके आ गए, कहीं पर वो नंदा नाई बन करके पहुंच गए, और वो एक रूप है, अनेक रूप, रूप आये विष्णु में प्रविष्णु में, कब कब कौन सा वो रूप बना ले। शुल्बा ने सोचा, मुझे लगता है कि अब आप उनको बुलाओगे नहीं। शुल्बा ने सोचा, माला लिए हैं, जाप कर रही हैं, मन में एक भाव बनाया और भाव का पत्र निकाला, भाव की लेखनी ली और भाव की लेखनी से भाव के पत्र पर उन्टंकित किया, उस पर लिखा, हे नंदनंदन मुरली मनोहर द्वारिकाधीश, मेरे श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, पल प्रतिपल मैं आपका स्मरण चिंतन करती हूँ। अब मुझे हमने सुना है संतों के मुख से कि 12 वर्ष में यदि आप उनका चिंतन करो तो 12वें वर्ष में भगवान जरूर आते हैं, तो मुझे विश्वास उस वचन पर, और आपको वह वचन देखते हुए हमें दर्शन जरूर देना पड़ेगा। नीचे लिख दिया सुलभा, अपने भाव का डाकिया उसको पत्र पकड़ाया, उस भाव के डाकिया ने पत्र को लिया और भाव का डाकिया द्वारिका में गया और भाव भरा पत्र द्वारिकाधीश को दिया। भाव भरे पत्र को द्वारिकाधीश ने निकाला और पढ़ा और पढ़कर के भगवान विभूल हो गए, पिघल गए, द्रवीभूत होकर के तुरंत पांडवों को बुलाया, आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, आपकी उलझन ठीक हुई कि नहीं हुई? बोले, अभी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। क्यों, क्या 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 चर्चा चल रही है? बोले, चर्चा तो यही चल रही है कि शुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन, बिना युद्ध के मैं सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। अरे हमने तो केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन सुई के अग्रभाग भी देने को राजी नहीं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है कि आप एक अपनी संधि पत्र लिख करके मेरे को दो, मैं जाता हूं, लास्ट प्रयास करता हूं एक बार, ये मार काटना हो ज्यादा अच्छी बात है। 5 पांडवों ने पत्र लिखा, शयन किया, हमें 5 गांव दे दो, सब राज्य तुम्हारा। भगवान ने संधि पत्र लिया, उधर सुलवा ने कहा प्रभु जल्दी पधारना, पत्र को देखते तुरंत चल देना, खाना वहां खाना तो पानी आके यहां पीना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नोट, खाना वहां खाओ तो पानी आके यहां पीना। भगवान ने सुलवा के पत्र को लिया, तुरंत पढ़ा और पढ़कर के पांडवों के संधि पत्र को लिया। भगवान तो बहाना बनाते हैं, भगवान को किसी भक्त को दर्शन होता देना होता है तो इन किन प्रकार कोई न कोई बहाना तो भगवान को बनाना पड़ता है। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, निमित्त बनाना पड़ता है भगवान को, काम करना तो निमित्त तो बनाना ही पड़ेगा। भगवान ने वो पत्र लिया और पत्र को संभाला, रथ पर बैठे और हस्तनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। खाना वहां खाना तो पानी यहाँ पीना, बार बार चिंतन चल रहा है भगवान का, खाना वहां खाना तो पानी यहाँ पीना। भगवान रथ पर बैठ गए, लगाम को हमन में हाथ में थामे हुआ है, साथी घोड़ों को बढ़ा रहा है। सुलभा ने सोचा मैंने बहुत अच्छा पत्र लिखा था, मेरे श्याम सुंदर को जरूर मिल गया होगा, आप भी पूजा में बैठो, माला फेरो, भजन करो। तो एक आप भी पत्र लिखना, हमको भी 12 वर्ष हो गए हैं, जाप करते करते भजन करते करते, हे श्याम सुंदर हम भी आपको पत्र लिख रहे हैं, अभी तक लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख देना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, खाना वहां खाना तो पानी यहां पीना। रथ को दौड़ा रहे हैं, देर न हो जाए भगत की, भगत के अंदर के कुतूहल पैदा न हो जाए कि मुझे दर्शन में देरी हो रही है। भगवान दौड़ते हैं, भगवान भागते हैं, ध्यान देना, एक भगवान ही ऐसा है, एक भगवान ही ऐसा है जो एक आवाज में भागा चला आता है। वरना घर में अपना प्यारा बेटा जब तक 6 बार नहीं बुलवा लेता है, बुढ़िया माँ चिल्लाती रहती है, 10 बाज देती है तब घर वाले सुनते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसा है, एक आवाज में आता है, एक आवाज में। भगवान ने सारथी से कहा अरे भाई जल्दी घोड़ों को दौड़ा, मैंने जल्दी से जल्दी पहुंचना है, रथ को हाँका जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, सुलभा कुटिया के सामने खड़ी है, भगवान आने वाले होंगे, हमारा पत्र तो पहुंच गया होगा। कुटिया में जाती है, बाहर निकलती है, विदुर जी घर में आए, अरे सुलभा हमने तो सुना है कि आज द्वारकाधीश आने वाले हैं, द्वारकाधीश आने वाले। सुलभा को विश्वास हो गया मेरा पत्र मिल गया है और मेरे भगवान अब जल्दी जल्दी पधारेंगे। सुलभा ने जब सुना भगवान आने वाले हैं, सुलभा को विश्वास हो गया अब मेरा पत्र भगवान को मिला है और भगवान मुझे ही मिलने आ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर चल रहे हैं द्वारकाधीश हस्तनापुर की तरफ। सुलभा कुटिया में जाती है, जाती तो है पर कुटिया में मन नहीं लगता है, दौड़ के दरवाजे पे आती है, देखती है राह की तरफ आए भगवान, फिर अंदर गई, फिर तुरंत लौट के आए भगवान, अंदर गई फिर आए भगवान, करते करते शाम हो गई, ऐसी लगन सायंकालीन। शिल्भा ने लंबी दृष्टि डाली तो आकाश में धूल उड़ रही थी, हो लगता है मेरे भगवान आ रहे हैं और भगवान के साथ उनके भक्त भी आ रहे हैं, उनके पैरों से उड़ रही ये धूल आकाश में छा गई है। फिर और दृष्टि डाली, रथ और आगे बढ़ा तो रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी, ये लगता है ध्वजा हमारे द्वारकाधीश के रथ की है। और रथ पास में आया तो भगवान के मुकुट में लगा हुआ जो हीरा था वो चमक रहा था, कहा ये मेरे भगवान के मुकुट में लगा हीरा चमक रहा है। ये लगता है मेरे श्याम सुंदर बिल्कुल आप पास में आने वाले हैं। मुकुट दिखाई पड़ा, भगवान का चुबुक थोड़ी दिखाई पड़ी, भगवान का मुखमंडल दिखाई पड़ा, भगवान का वो वांग्मय धीरे धीरे दिखने लगा। विदुरानी की जो कुटिया थी, विदुर की जो कुटिया थी, वो ठीक उसी रास्ते पर थी जहां से रथ ने गुजर करके जाना था। संधि पत्र को भगवान ने संभाल के रखा है, विदुरानी एकटक खड़ी है, रथ आने वाला है, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। भगवान कहते हैं नीचे लिखा था नोट, खाना वहां खाना तो पानी यहां के पीना। भगवान को पूरा याद है, पूरा याद है, पूरा। भगवान रथ को बढ़वा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। विदुरानी कुटिया के सामने अपलक पलक बंद नहीं करती हैं, कहीं पलक बंद होगा तो रत्न कहीं निकल जाए, कहीं पलक बंद हो गया तो भगवान न कहीं चले जाए। भगवान का बिना दर्शन किए हुए हम जाने नहीं देगी, भगवान को मैं अपलक देखूंगी। आज पलक भी विघ्न बनने जा रहे हैं। यद्य पलक रक्षा करता है आंख का, लेकिन कई बार ये पलक भी विघ्न लगता है भक्त को। भगवान के मध्य में, भक्त के मध्य में, भक्त और भगवान के मध्य में कभी कभी पलक विघ्न बन जाता है। शुल्भा खड़ी हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे नंदन नंदन मुरली मनोहर द्वारिकाधीश अब आने वाले हैं। घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ रही है, लोगों को बोलने की जो आवाज है मेरे कानों तक पहुंच रही है, घोड़े के टाप की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। भगवान बिल्कुल मेरे समीप में आने वाले हैं, बस उनका मुझे दर्शन होने वाला है, आनंद में विभोर हैं। रथ सामने से गुजरा, कुटिया के सामने से निकला, विदुरानी ने देखा यूं, भगवान श्याम सुंदर ने स्मित हास्य किया। और जब भगवान ने स्मित हास्य किया, स्मित हास्य करते ही विदुरानी शुल्भा के जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो सारे धुल गए, और वो पाप जो थे वो आंसू बनकर के आंख से निकलने लगे। जब आंसू बनकर के आंख से निकले तो शुल्भा ने कहा, अरे पापियों तुम कहां से आ गए, मेरे भगवान का तुम दर्शन भी मुझे नहीं करने दे रहे हो। ये आंसू भी कभी कभी विघ्न बनता है, अपने इष्ट के दर्शन में ये आंसू भी कभी विघ्न बन जाते हैं। शुल्भा ने तत्काल उन आंसुओं को पोंछा और पोंछ करके अपलक होकर के भगवान को निहारा। जब भगवान को निहारा, जब भगवान को देखा, भगवान ने स्मित हास्य किया और भगवान ने संकेत किया, हे मेरी शुल्भा, संकेत किया, देवी शुल्भा मैं अभी जाकर के अभी आया, अभी जाके अभी आया, तुरंत अभी आया, ऐसा भगवान ने संकेत किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शुल्भा ने बड़े भाव से, अपलक भाव से भगवान का दर्शन किया, बहुत आनंद आया। कुछ क्षणों के लिए रथ रुका, भगवान का दर्शन किया, शुल्भा को बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ी ठंडक मिली, बहुत आनंद विभोर हुई। रथ आगे बढ़ा, हस्तिनापुर में पहुंचा। दुर्योधन को सूचना मिल चुकी थी कि भगवान आ रहे हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, स्वागतम लिखा गया है, पंदन बार बनाया गया है, भगवान का भव्य स्वागत किया गया है। भगवान बैठे, ऊंचा सिंहासन बना रखा था। भगवान ने कहा, ये दुर्योधन बोला इस पर बैठिए। बोले मैं इस समय कोई राजा बन के नहीं आया हूं, मैं तो दूत बन के आया हूं, और दूत का काम होता है खड़े होकर के अपनी सूचना देना। मैं ये संधि पत्र आया हूं, इसको पढ़िए। संधि पत्र को लिया, उसमें लिखा था कि मुझे केवल 5 गांव दे दिए जाएं, अन्य की मुझे आवश्यकता नहीं है, दुर्योधन रखे अपने पास। दुर्योधन भगवान से बोला, आप संधि पत्र लेकर के आए हैं, आप ये सूचना लेकर के आए हैं, 5 गांव दे दिए जाएं। आपने पांच गांव की डिमांड की, आपने पांच गांव की मांग की है। वीर का काम मांगना नहीं होता है, वीर कभी मांगता नहीं है, क्षत्रिय कभी मांगता नहीं है, ये मांगना तो भिखारियों का काम होता है, मांगना भिखारियों का काम होता है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर तो वही है जो अपने बाहुबल से लेता है, मांग के नहीं लेता है, मांग को भोग नहीं करता है। मांग रहे हैं आप उनके लिए, पांडव मांग रहे हैं। दुर्योधन ने कहा स्पष्ट, हे केशव, हे श्याम सुंदर, सुच्यग्रम न दास्यामी बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, आप तो पांच गांव की बात करते हो, हम सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी देने को तैयार नहीं है युद्ध के बिना। दुर्योधन बोला, आप बहुत लंबी सफर करके आए हैं, आपके लिए भोजन तैयार कराया गया है, आइए प्रसादी पाइए। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन ऐसा है, दो अवस्थाओं में खाया जाता है, यह आदमी इतना भूखा हो, इतना भूखा हो उसके प्राण निकल रहे हो तो वो भोजन करे, अथवा खिलाने वाले में इतना भाव हो, इतना प्रेम हो, इतनी भक्ति हो तो उसकी भक्ति से, भाव से, प्रेम से प्रभावित होकर के भोजन कर ले। मैं न भूखों मर रहा हूं न तुम्हें प्यार है, दोनों अवस्थाओं में एक भी अवस्था खाने की नहीं है। हमने बहुत पकवान बनाए हैं, बहुत मिष्ठान बनाए हैं, कोई बात नहीं, आपको मुबारक हो, भगवान वही खाता है, वही जीमता जा भाव हो। भगवान ने देखा भाव नहीं है, संधिपत्र देकर के भगवान वापस लौटे सुलभा की तरफ, विद्रानी की तरफ। इधर सुलभा ने सोचा, मेरे भगवान तो चले गए हैं, अब मेरे भगवान तुरंत अभी आने वाले हैं, इसलिए जरा भगवान की आरती पूजा करूं कि मैं नहा धो लूं। सुलभा ने सोचा, नहाऊं तो मैं सही, इस साड़ी को पहन के नहा लिया तो क्या पहनूंगी, एक ही तो साड़ी है, एक ही तो वस्त्र है, यदि इसको मैंने पहन के, यदि इसको पहन लिया तो फिर कहां से पहनूंगी। साड़ी को उतारा, रख दिया, अंदर से कुंडी बंद की, कुटिया की अंदर से कुंडी बंद की, और कुंडी बंद करके सुलभा स्नान करने लगी, नग्न स्नान करने लगी, नहा रही थी, दो चार मग्गे अभी सिर पे डाले ही थे, इतने में भगवान श्याम सुंदर आ गए, कुंडी बजाई, अंदर से बंद है। भगवान श्याम सुंदर बोले, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि विदुर तो मेरे चाचा लगते हैं, ये उनकी देवी तो मेरी चाची लगेगी, मेरी काकी लगेगी। सो भगवान श्याम सुंदर दरवाजे पे खड़े होकर के और बड़े प्रेम से कहने लगे, वो कुंडी बजा करके भगवान बोले, क्या बोले, अरे काकीरी 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 काकीरी, खोलिए कपाटियां, काकीरी काकीरी खोलिए कपाटियां, और बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो, नंगन उठ धाई ब्रजराज जू की बाणी सुन, और बौरी सी विदुरानी प्रेम ज्यों प्रगट भयो, जानो विनीत विशंबर है दिगंबर दे, और नेह सो आपनो अंबर उलट दयो, कांधे से झटक, भगवान श्याम सुंदर ने कांधे से झटक, अरे पीतांबर पट फेंको है तो पीतांबर का की कर सो लिपट गयो। भगवान श्याम सुंदर ने आवाज लगाई, काकी काकी अरी काकी अरी ओ काकी काकी तीन बार बोला, विदुरानी के कानों में आवाज गई, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। अभी मग्गे दो डाले ही थे, विदुरानी के कानों में जब आवाज गई काकी काकी काकी, भगवान के शब्दों को सुन करके विदुरानी के अंदर वो प्रेम प्रकट हुआ, वो विभुलता प्रकट हुई, वो आह्लाद प्रकट हुआ, वो आनंद उमड़ा, वो रस उमड़ा, और ऐसा रस अगाध उमड़ा, रस का सागर उमड़ गया, और उस रस के सागर में रसो वैसा, उस सागर में प्रवाहित हो गई विदुरानी, बह गई बह गई। विद्वानी को होश ही नहीं है कि मैंने वस्त्र पहना कि नहीं पहना। अरे नगन उठ धाई, नगन उठ धाई, ब्रजराज जू की बाणी सुन, और बौरी सी विदुरानी प्रेमयो प्रकट भयो। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि विदुरानी को होश ही नहीं है कि मैंने वस्त्र पहना या नहीं पहना। दौड़ के आई, नग्न ही आई, और कुंडी खोली, भगवान ने अंदर प्रवेश किया। मेरे भगवान ने विचार किया, आज भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं है, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं है, वासना नाम की कोई चीज नहीं, ये वासना ही भगवान को मिलन भक्त से नहीं करने देती है। जिस दिन वासना का वस्त्र गिर जाएगा, जिस दिन वासना का पट गिर जाएगा, ये वस्त्र क्या है, वासना है। जब तक वासना है, सुखदेव ने वस्त्र नहीं पहना, इसके मतलब उनमें वासना नहीं है। जहां वस्त्र है वहां वासना है, वस्त्र चला गया वासना चली गई, सुखदेव जी की वासना गई वस्त्र चला गया, विदुरानी का वस्त्र गया तो वासना चली गई। भगवान ने कहा आज भक्त और भगवान के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, मेरी शोभा में अब कोई वासना नहीं है, अब धूत है। वासना का वस्त्र गिर गया, भगवान बड़े आह्लादित हुए, आज मेरा भक्त मेरे योग्य बन गया है, मेरे लायक बन गया है। जब मेरे भक्त में कोई वासना नहीं रहती है, जब कोई विकार नहीं होता है, तो वो मेरा भक्त बन जाता है, और मेरे हृदय में रहता हूँ, मैं अपने उस प्रिय भक्त के हृदय में रहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई भी पार्थक्य भेद नहीं होता है, कोई अलगाव नहीं होता है, हम और हमारा भक्त हम दोनों एक हो जाते हैं, दोनों हम एक हो जाते हैं। शुल्भा को भगवान ने देखा, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने चिंतन किया कि आज भक्त ये मेरा मेरे लायक हो गया। भगवान ने दुनियावी ढंग से देखा, व्यवहारिक ढंग से भगवान ने देखा, व्यवहारिक ढंग से चिंतन किया, यदि मेरी शुल्भा को ये दुनिया वाले देखेंगे कि कुछ दुनिया की दृष्टि में काम है, वासना है, विकार है, ये दुनिया वाले हमारे और विदुरानी के भाव को क्या समझें, क्या समझें ये लोग, ये तो वासना की आंख से देखेंगे, काम की आंख से देखेंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां श्याम होता है वहां काम नहीं होता है, और जहां काम होता है वहां श्याम नहीं होता है। भगवान ने विचार किया, ये दुनिया की आंख में काम होता है, काम जब भी प्रवेश करता है तो आंख के द्वारा प्रवेश करता है। भगवान ने देखा, सोचा, चिंतन किया, विचार किया, भगवान व्यवहार को भी महत्व देते हैं, ध्यान देना, जितना भगवान की दृष्टि में व्यवहार है उतना ही परमार्थ है। भगवान परमार्थ को भी देखते हैं, अध्यात्म को भी देखते हैं, और व्यवहार को भी देखते हैं। भगवान ने अभी अध्यात्म को देखा, अब भगवान व्यवहार को देखने जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया, मेरी शोभा कि अंग पर तन पर कोई वस्त्र नहीं है, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे। भगवान ने व्यवहारिक रूप से, अरे तन से झटक कांधे से झटक, अरे कांधे से झटक, पीतांबर पट फेंको है तो पीतांबर का की कर सोल पट गयो। भगवान ने ऐसा पीतांबर घुमा के फेंका, आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और बहुत संभाल संभाल करके साड़ी को पहनो तो इतनी अच्छी नहीं पहन पाओगे जितना अच्छा भगवान ने फेंक के पीता पर पहना। शुल्भा को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो डूबी है भाव में। शुल्भा डूबी है भाव में, भगवान ने पट को फेंका है, पीतांबर फेंका है, साड़ी के रूप से शुल्भा को पिट गया है। भगवान ने शुल्भा ने भगवान का हाथ पकड़ा, आओ श्याम सुंदर, आओ मेरे नंद नंदन, आओ मेरे भाग्य बिहारी, आओ मेरे द्वारिकाधीश। अंदर ले गई, कहां बिठाऊं, किधर बिठाऊं, फूस की कुटिया है, दिल साफ होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, कुटिया छोटी है कोई बात नहीं, कुटिया छोटी है कोई बात नहीं, पर दिल बड़ा होना चाहिए। मैं जानता हूं मुंबई में फ्लैट बहुत छोटे होते हैं, पर दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। शिल्पा ने कहा मेरा दिल बड़ा है, मेरे मन का आसन बहुत अच्छा है, अपने प्रभु के मन के आसन में बैठाऊंगी। टूटी फूटी चटाई थी पर मन का बड़ा प्यारा आसन था, संभाल के रखा है, बड़े दिन से जप किया है, बड़े दिन से भजन किया है, बड़े दिन से उपासना की है, बड़े दिन से चिंतन किया है, चिंतन भजन करके मैंने इस आसन को तैयार किया है। मेरे भगवान अब इसी मेरे आसन पर बैठेंगे, 12 वर्ष बीत गया है मेरे को आसन बनाते बनाते, अब आसन बन के तैयार हो गया तो मेरे भगवान बैठने को आ गए उसी आसन पर। दिल के आसन पर शुल्भा ने भगवान श्याम सुंदर को विराजमान करा दिया, भगवान विराजमान हो गए। मैं अपने श्याम सुंदर को, अपने द्वारिकाधीश को क्या खिलाऊं, क्या प्रदान करूं, हम पर ऐसी कौन सी वस्तु, मेरी कुटिया में झांका, इधर उधर देखा, एक कोने में कुछ केले पड़े हुए थे, ताजे नहीं सूखे, उठा के लाई। भगवान के मुख को निहार रही है, ललाट को दिखा निहार रही है, नयन ओर सम्मिलने, नयन से नयन मिले हुए हैं, नेत्र से नेत्र मिले हुए हैं, एक तक अपलक भगवान को निहार रही है। कर से कर्म करिय विधि नाना, मन राखिय जा कृपा निधाना। शुल्भा ने केला उठाया है, विद्वानी ने केला उठाया, केले को छील करके मस्ती में डूबी हुई है, भाव में डूबी हुई है, केले को छीला, छीलते छीलते गूदा तो गिर गया, हाथ में छिलका है, उठाया भगवान को मुख में दे दिया, लो प्रभु जी कुछ मेरे पास नहीं है, केला दिया। भगवान ने उस केले का भोग लगाया, भगवान उस केले के छिलके को खा गए। दूसरा केला उठाया, शुल्भा ने छीला, छील करके उस केले को, केले के छिलके को भगवान के मुख में दे दिया, भगवान ने वो केला का छिलका भी खा लिया। तीसरा केला उठाया, फिर छीला, भगवान ने वो छिलका तीसरा भी खा लिया। भगवान भाव से, भगवान वस्तु का ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान तो भाव का ग्रहण, भाव को ग्रहण करते हैं। भावो ही विदिते देवो तस्मात भावो ही कारणम, वस्तु का प्राधान्य नहीं है, प्राधान्य तो भावना का है कि आपकी भावना कैसी है। भाव से शुल्भा ने फिर केला उठाया, इतने भी विदुर जी ने प्रवेश किया, विदुर ने निहारा, विदुर ने देखा, कई गूदा जमीन पे पड़े हुए हैं, छिलका एक भी नहीं दिख रहा है, अरे छिलके कहां गए हैं, हमको लगता है इस पगली ने भगवान को छिलके ही खिला दिए। विदुर दौड़ करके आए, शुल्भा से कहा, शुल्भा, अरे शुल्भा, शुल्भा भगवान को क्या खिला रही है, कुछ नहीं, कौन सुने, जो सुनने वाला भाव तो सुने है ही नहीं, वहां पर वो तो भगवान में रमण कर रही हैं, जो कोई भगवान में रमण करता है तो दुनिया की आवाज कान में नहीं, दुनिया में रहने पर भी दुनिया में नहीं होता है, शरीर दुनिया में होता है लेकिन मन भगवान में होता है। विदुर जी ने हाथ पकड़ा शुल्भा का, हाथ को खूब हिलाया, अरे अरे शुल्भा, ए शुल्भा, ए शुल्भा, शुल्भा शुल्भा, कई बार हाथ पकड़ के हिलाया, अरे शुल्भा ये तू क्या कर रही है, गूदा सब जमीन पे पड़ा हुआ है और भगवान को तूने छिलके खिला दिए। जब खूब हिलाया तो शुल्भा की जैसे पता नहीं कब से सोई हुई हो, क्या है क्या है क्या, अरे तुमने क्या किया, ये भगवान को सारे छिलके खिला दिए। शुल्भा तूने भगवान को छिलके खिला दिए हैं, देखे सब गुदा पड़े हुए हैं, छिलका एक भी नहीं है। विदुरानी को जब ऐसा कहा तो विदुरानी तो कुछ बोली नहीं, भगवान बोल पड़े। भगवान कहने लगे कि हे विदुर मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, हे विदुर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया। भगवान बोले स्वर्ग नहीं भायो, स्वर्ग नहीं भायो, अब देश घर धायो फिरो और पेट भरने पायो, प्रवास बन कीनो है। स्वर्ग नहीं भायो, अब देश घर धायो फिरो और पेट भरन पायो, प्रवास बन कीनो है। अरे नंद यशोदा गृह जीवन सब यूं ही गयो, और जाको दूध दही और बाको छाछ छीनो है। अरे काकी की करों से, काकी के करों से प्रसाद कछु ऐसो पायो, ताशो बिनीत कतहूं स्वाद नहीं लीनो है, ताशो कतही स्वाद नहीं लीनो है। तृप्त भय जाथ थे रूखे बदन बोले प्रभु, अरे भूखे को फेर तूने भूखो राख लीनो है। हे विदुर तुमने अच्छा नहीं किया है, मैं तुमको सच बताता हूँ, स्वर्ग नहीं भायो, मैं स्वर्ग में गया, बहुत कुछ खिलाया गया, स्वर्ग नहीं भायो, इतना ही नहीं राम अवतार हुआ, अवधेश घर में गया, अयोध्या में गया, स्वर्ग नहीं भायो, अवधेश घर धायो फिरो और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीनो है। मैं वनगमन की यात्रा भी की उस समय पर, वहां सीता ने बहुत कुछ खिलाया पर कभी इतना आनंद नहीं आया, प्रवास बन कीनो है। इतना ही नहीं नंद यशोदा गृह जीवन सब यूं ही गयो, नंदेशोदा मैया ने बहुत कुछ खिलाया, गोपियों ने बहुत कुछ खिलाया, नंदेशोदा गृह जीवन सब यूं ही गयो, अरे जाको दूध दही और बाको छाछ छीनो है। सो काकी के करों से, सच कह रहा हूं, काकी के करों से प्रसाद कछु ऐसो पायो, और ताशो बिनीत कतहूं स्वाद नहीं लीनो है। मैं तुमको सच बतलाता हूं, अरे तृप्त भये जात थे, तृप्त भये जात थे रूखे बदन बोले प्रभु, अरे भूखे को फेर तुमने भूखो राख लीनो है। हम तृप्त हो जाते, आज से मुझे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदुर तुमको और बताऊं, सच कह रहा हूं विदुर, भगवान बोले सच कह रहा हूं, भगवान बोले मोहन भोग मेवा, अरे मोहन भोग मेवा मिठाई मंदिरों में मिले, और पाए पुजारन के पदार्थ सब फीके हैं, अरे बन को राज्य और अवध के विराज वे में, अरे भोजन न भाये कहूं जानकी जी के हैं। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मोहन भोग मेवा मिठाई मंदिरों में मिले, असंख्य मंदिर हैं, सब मंदिरों में विराजमान हूं, मोहन भोग लगता है, मिठाई मंदिरों में सब कुछ दिया जाता है। अरे मैं ज्यादा तुमको क्या कहूं, हमारी द्वारिका में रोज 56 भोग लगता है, रोज 56 भोग लगता है, लेकिन 56 भोग भी इस शिल्भा के इस प्रसाद के सामने फीका पड़ गया है। मोहन भोग मेवा मिठाई मंदिरों में मिले और पाये पुजारन के, ये पुजारी लोग हमको भोग लगाते हैं, पाये पुजारन के पदार्थ सब फीके हैं, और बन को राज्य और अवध के विराजवे में भोजन न भाए कऊ जानकी जी के। अरे कहत सकुचात, हमें संकोच आ रहा है कहने में, संकोच आ रहा है, हम कहीं पर तृप्त नहीं हुए, रस नहीं आया, आनंद नहीं आया। आज मेरी शोलभा ने, अरे मेरी विदुरानी ने, आज मेरी काकी ने जो मुझे खिलाया, यदि आप थोड़ी देर नहीं आते तो मेरा काम बन जाता, मैं तृप्त हो जाता, फिर मुझे कभी भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर जी महाराज ने कहा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। ध्यान देना, यदि कोई भी भक्त भक्ति कर रहा है, कोई भी साधक साधना कर रहा है, कोई भी जप कर रहा है, तो जप के बीच विघ्न नहीं बनना चाहिए। कोई महात्मा माला फेर रहा है, विघ्न न बनो। कहीं बढ़िया कथा चल रही, आनंद प्रवाहित हो रहा है, विघ्न नहीं बनो, बहुत बड़ा पाप लगता है। निंदा भंगो निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यों दारु भेदने शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्या समम लभे। ऐसा वर्णन आया है, निंदा भंगो कथा छेदो, भगवान का कथा प्रसंग चल रहा हो, जहां भक्त अवगाहन कर रहे हो, गोते लगा रहे हो, उस रस में डूबे हो, ध्यान देना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। विदुर जी ने कहा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, भगवान मैंने तो यही सोचा था कि आप मेरे घर में पधारे हैं, आप मेरे घर में दर्शन दिए हैं, और हमारी शोलभा, पहले तो घर में कुछ है नहीं, और जो रूखा सूखा टूटा फूटा है भी, तो ये सब उल्टा कर रही है, गूदे को गिराती जा रही है और छिलकों को खिलाती जा रही है, तो इसलिए मैंने इस शोलभा से ऐसा कहा था। भगवान बोले अरे विदुर, रस आनंद गूदे में नहीं होता है, रस आनंद तो हृदय में होता है, भाव में होता है। जो छिलके में आनंद मैंने पाया, वो गूदे में आनंद नहीं था। हम तो छिलके से ही तृप्त हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रेक्षति, यदि मुझे कोई पत्र पुष्प फल जल भी अर्पित करता है, उससे मैं तुष्यति संतुष्ट हो जाता हूँ और तृप्त हो जाता हूँ। तृप्त तृप्तोष्मी, मैं तृप्त हो जाता हूँ, मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ। ऐसी भाव है, ऐसी भक्ति है, जब प्रेम होता है, जब भाव होता है, पदार्थ फीका पड़ जाता है, भाव श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से विदुर और विदुरानी दोनों को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया, दिव्य दर्शन दिया। विदुर और विदुरानी थाली तैयार करते हैं, अक्षत चंदन पुष्प रखते हैं, भाव के पुष्प, भाव का चंदन, भाव का फल, भाव का जल, भाव ही तो प्रधान है। न काष्ठे विद्यते देवो, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृणमये, और भावो ही विद्यते देवो तस्मात भावो ही कारणम। अरे भाव ही तो कारण है, तो मेरे को भावों से दो, जो तुमने देना है भावों से दो। यदि भाव होगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, और भाव नहीं होगा तो मैं आने वाला नहीं हूं। कौन बोले? भगवान। कौन बोले? भावों से दो, जो देना मेरे को भाव से दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसे दो? भक्ति से दो, भाव से दो, मन से दो। सड़ी गली है, वस्तु भगवान को नहीं दो, फटा नोट भगवान को न चढ़ाओ, खोटा सिक्का भगवान को न चढ़ाओ। दुकान पे कई बार चलाया, अब चला नहीं तो क्या करें, आओ प्रेमपुरी में गल्ले में डाल दो चल जाएगा, भगवान का सब चलता है जी। है प्रकाश जी, भगवान का सब चलता है, भगवान सब चला लेते हैं, ये भगवान की माया है, वो नहीं चला पाएंगे क्या, अपने आप वो चलाएंगे। डाल दो खोटा सिक्का, जब नोट नहीं चलता तो चला दो भागवत जी पे, कथा खत्म होती, नोट देखे जाते हैं कितने कटे नोट, सड़े नोट, गले नोट निकलते हैं, पर बंबई में ऐसा नहीं होता है, और यहां तो घास नहीं होता है, ये तो प्रेमपुरी जी का आश्रम है, यहां तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की एक बुढ़िया माता जी थी, काफी एज हो गई थी, मंदिर गई, नीचे रेडी खड़ी थी, वो रेडी वाले से बोला, एक काके, पंजाब की बात है, इत्थे की नहीं, यहां की नहीं, वो एक गल पंजाब की है, एक काके इत्थे आ। वो काके को बुलाया, तेरे पास भगवान वाले फल हैं? हैं? भगवान वाले फल, हाँ, मंदिर में भगवान को चढ़ाना, भगवान वाले फल हैं। बोले माता जी, ये तो ऐसे कोई फल नहीं बने अभी तक, तू नहीं जानता भगवान कौन से फल होते हैं। बोले ये ऊपर रखे क्या हिसाब है? बोले ये तो 50 रुपए दर्जन है। अब बोले ये वाले? बोले ये तो 30 रुपए है। अब वो थल्ले रखे रेडी के, वो बोले जो तू देना चाहते 10 रुपए दे, चल कोई बात नहीं, 10 रुपए वे बुढ़िया ने फल लिए, वो एक दर्जन उठाए तो वो चू रही थी, टपक रहे थे। भगवान शिव की खूब पूजा की प्रेम से, और पूजा करने के बाद उठाए फल और शिवलिंग पे रख दिए, कन्हैया के पास में रख दिए, लो हे भोलेनाथ, हे नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्वारिकाधीश, आपको बड़े भाव से चढ़ाए, प्रेम से खा लेना, अरे बहुत दिन हो गए शादी हुए, मेरे मुन्ना की, मेरे काके की, मेरे बेटे की, बहुत दिन हो गए शादी हुए, अभी तक मुन्ना नहीं आया, अभी छोरा नहीं आया, छोकरा नहीं आया, वो भगवान ऐसी कृपा करना आपकी छोकरा जरूर दे देना। 9 महीना बीता, घर में छोटा नन्हा मुन्ना बालक आया, पुत्र हुआ, बुढ़िया बहुत खुश हुई, भगवान ने बेटा दे दिया, एक बार फल चढ़ा के आई थी। अब बुढ़िया और बच्चे को लेती, यूं बिठाती, यूं तो यूं लुढ़क जाता, फिर संभाल के उसको यूं बिठा, फिर लुढ़क दिया वो यूं, बार बार प्रयास करती बिठाने को, यूं लुढ़कता, यूं लुढ़कता, भगवान के पास में द्वारा भाग के गई, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आपने बेटा तो दिया, सही में मानते हो आपने दिया, मेरा कहना पूरा किया आपने, जो मांगा आपने दिया, पर हे भगवान ऐसा दिया, ऐसा दिया, वो टिकता ही नहीं है, वो तो यूं बिठाओ तो यूं लुढ़क जाता, यूं लुढ़क जाता, यूं लुढ़क जाता, वो टिकता ही नहीं है। भगवान ने कहा, बुढ़िया तूने केले कैसे चढ़ाए थे, वो तेरे केले भी पिलपिले थे, तो तेरे को बेटा भी पिलपिला मिला है। कैसा मिला है? पिलपिला, तेरे को बेटा भी मिल गया, जैसा फल तूने चढ़ाया वैसा फल तेरे को हमने दे दिया, तो जैसा तूने जी वैसा हमने। कृष्ण कन्हैया लाल की, भैया भक्ति में तो भाव की विधानता है, शिल्भा ने, विद्वानी ने भक्ति की, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत रस आया, ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसी वृत्ति। हमारी तो कथा ऐसी है, बह गई तो बह गई है जी। है प्रकाश भाई, मैं क्या करूं, आज मैं रोक ही नहीं पाया, अपने घड़ी पे निगाह ही नहीं गई, भूल गया, घड़ी याद तब रह जाए दिमाग बुद्धि, हम तो भाव में थे, कहां थे, ये सोचने समझने का काम बुद्धि का है, बुद्धि में थे ही नहीं, हम तो कहां थे, भाव में थे, तो घड़ी भाग गई, घड़ी भाग गई, बहुत आगे निकल गई। हमारे बेटे ने बोला, महाराज आज कितनी कथाएं, मैंने कहा कई कथाएं कहनी है, थोड़ी मालूम है बह जाऊंगा, बहुत कुछ सोच के आया था सुनाने के लिए, लेकिन भाव ऐसा बना, ऐसा बना, मैं बह गया। ये हमारे बच्चे बहुत संगीत में बड़े माहिर हैं, हम कहीं भी जाता इन लोगों को ले जाता हूं, इनके गले पर, इनके गले में भगवती सरस्वती विराजमान है, ऐसा सुरीला गला। ढोलक में वो माहिर, वो अपने अपने विषय में सब्जेक्ट में सभी माहिर है, सभी कुशल है, तो बहुत अच्छी बात है भगवान ऐसी कृपा। और मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि आपका भाव, हम बहुत जगह कथा करते हैं, पंजाब में करते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, भारतवर्ष में बहुत जगह जाता हूं, सच आप समझना, यथार्थ समझना, ये प्रशंसा नहीं, ये बड़ाई नहीं है। जो सौम्यता, जो शालीनता, जो एकाग्रता हमने आप लोगों में देखी, वो मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। जहां भी कथा कहूंगा वहां मैं ये जरूर कहूंगा, मैं प्रेमपुरी आश्रम भागवत सप्ताह कहने गया था, जैसी हमने शांति वहां देखी वैसी मैंने कहीं नहीं देखी, ये बात जरूर मैं कहूंगा सब जगह। तो भगवान से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है कि आपकी ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना बनी रहे। हमने चाहा था कि हम कुछ और भी चर्चाएं करें, चलो शाम को करेंगे, कोई बात नहीं, जो भगवत की इच्छा जैसी कृपा वैसा हमारा प्रसंग चला। मैं बह गया, एक भजन हमारा बेटा बोलेगा, उसके बाद में समापन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की
जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, प्रेम विपसी रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे प्रेम की बसी अरे जुनी रथ हाक्यो, प्रेम की बसी अरे जुनी रथ हाक्यो, भूल गए ठकराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, से ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की
जय,
स्वामी जी महाराज की
जय,
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।